बहुत पवित्र दिन है। दो उत्सव हैं, एक तो श्री पाद मध्वाचार्य का आविर्भाव और दूसरा भगवान श्री रामचंद्र विजयोत्सव। तो श्री पाद मध्वाचार्य का जो जीवन चरित्र है ये मैं पढ़ के सुना रहा हूँ समाधि पुस्तक से। इनका आविर्भाव हुआ था 1238 में उडुपी के निकट कर्नाटक दक्षिण भारत में, और इनको वायु देवता का अवतार माना जाता है और इनके शरीर में असीमित असाधारण बल था और असाधारण बुद्धि थी। तो एक बार एक बंगाली बाघ ने आक्रमण किया मध्वाचार्य के सन्यासी शिष्य सत्य तीर्थ के ऊपर, तो मध्वाचार्य ने उस बाघ के साथ कुश्ती लड़ी। देखा कितना साहस, साथ कुश्ती लड़ी और उसको भगाया। जब मध्वाचार्य के बल से जब वो हार गया तो अपनी पूंछ को दोनों पैरों के बीच में दबा करके चला गया। मध्वाचार्य ने दीक्षा ली थी 5 वर्ष की अवस्था में और संन्यास लिया 12 वर्ष की अवस्था में और घर त्याग दिया। तो इनका जन्म हुआ था एक विशेष कार्य के लिए, वो क्या है, शंकराचार्य का जो मायावाद सिद्धांत है उसको खंडन करना। तो शुद्ध जो व्याख्या है वेदांत सूत्र की उसको उन्होंने लिखा, और फिर जो शुद्ध भगवान की भक्ति है उसका प्रचार किया। इन्होंने अपने सिद्धांत को नाम दिया द्वैतवाद। शंकराचार्य के विरुद्ध, शंकराचार्य ने दिया था अद्वैतवाद, तो उसके बिल्कुल विरुद्ध है द्वैतवाद। शंकराचार्य का सिद्धांत है अद्वैतवाद, मतलब जीव और ईश्वर में कोई भेद नहीं है, अद्वैत दो नहीं है। मध्वाचार्य ने बिल्कुल उल्टा दिया, क्या द्वैतवाद, ईश्वर और जीव में भेद है, अलग अलग है। शंकराचार्य के बाद जिसने भारत में व्यापक भ्रमण किया हो, शंकराचार्य ने जैसे भ्रमण किया था निर्विशेषवाद अद्वैतवाद फैलाने के लिए, तो मध्वाचार्य ने भी जो ना भ्रमण किया भारत की पूरी लंबाई और चौड़ाई में, और जो है भगवान विष्णु की जो भक्ति का सिद्धांत है उसको उन्होंने फैलाया। तो इन्होंने असंख्य जैनियों को, बौद्धों को, मायावादियों को, नास्तिकों को, तर्कवादियों को हराया। फिर आशा करके कि शिला व्यास देव से मिलन हो सके, ये मध्वाचार्य हिमालय में स्वयं ही गए थे। तो व्यासदेव ने इनको सालग्राम शिला दी जिसे अष्टमूर्ति कहते हैं, और इनकी जो भगवत गीता की व्याख्या थी उसको उन्होंने अनुमोदन किया व्यास जी ने, और मध्वाचार्य को आशीर्वाद दिया कि इनको शास्त्रों का और ज्यादा गहरा जो है अनुभव प्राप्त हो जाए। उडुपी में मध्वाचार्य ने बहुत सुंदर गोपाल भगवान का जो विग्रह है उसको स्थापित किया है, जिसमें कि भगवान गोपाल जी जो है एक जो छड़ी है ना उसको लिए हुए खड़े हैं। तो ये जो विग्रह है एक गोपी चंदन का जो बड़ा टुकड़ा था उसमें निकला था, और इन्होंने 8 मठों की स्थापना की है ताकि उडुपी कृष्ण की जो है ना बड़ी प्रेम पूर्वक सेवा हो सके। जो सन्यासी लोग हैं प्रत्येक मठ के, तो वे कृष्ण विग्रह की पूजा करते हैं बहुत ही शुद्धता और जो है नियमों का पालन करते हुए, और हर एकादशी को ये लोग निर्जल एकादशी पालन करते हैं। गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय जो निकला है ये मध्वाचार्य से निकला है। श्री चैतन्य महाप्रभु और उनके अनुयायियों ने पूरी तरह से मध्वाचार्य का जो साहित्य है उसका अध्ययन किया है, तब उन्होंने अपने सिद्धांतों का निर्माण किया है। तो 60 संदर्भों के लिए श्रील जीव गोस्वामी ने मध्वाचार्य के साहित्य से बहुत कुछ जो है ना बातें निकाली हैं। जीव गोस्वामी ने देखा है कि गौड़ी सिद्धांत जो है, अचंद भेदावी तत्व जो है, ये मध्वाचार्य के भागवत पर्याय से ही निकला है। श्री चैतन्य महापुरुष स्वयं उडुपी में गए और मध्वाचार्य का जो वहाँ मठ है वहाँ पर गए थे और भगवान ने इस संप्रदाय में हरिनाम संकीर्तन की जो विधि है वो विशेष रूप से जोड़ी। तो जो मध्वाचार्य के अनुयायी और गौड़ीय वैष्णव हैं, तो मैं सिद्धांत की बहुत सी बातें मिलती जुलती हैं और दोनों ही स्वीकार करते हैं कि जरूरी है कि गुरु के जो है चरण कमलों का आश्रय लिया जाए। सूत्र भाष्य में जो है मध्वाचार्य बृहत तंत्र और महासंहिता का उदाहरण देते हैं ये बताने के लिए कि कोई जो शिष्य है तो अपने गलत गुरु को त्याग करके वो किसी विशेष जो योग्य आत्मज्ञानी गुरु हैं उनकी शरण लिए। प्रमेय रत्नावली में शिलबद्ध विद्याभूषण ने जो 9 सिद्धांत हैं उनको बताया है जो चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय और मध्य संप्रदाय में मिलते जुलते हैं। वैष्णव सिद्धांत माला में श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया सभी गौड़ी वैष्णवों को कि बड़ी सावधानी से 9 शिक्षाएं हैं सत्य की जो मध्वाचार्य ने दी हैं हमारे गुरु परंपरा में, उनका कठोरता से पालन करें। तो 9 शिक्षाएं क्या हैं मध्वाचार्य की? पहला तो है भगवान श्री कृष्ण एकमात्र परम सत्य हैं और कोई नहीं है उनके सिवा, पहली शिक्षा। दूसरी है कि ज्ञान के जो स्रोत हैं वो कौन है? वेद। वेदों का जो ज्ञान है वो भगवान कृष्ण को जानने के ही लिए है। फिर तीसरी बात है कि ये जो जगत है ये सत्य है, मिथ्या नहीं है। मायावादी कहते हैं जगत मिथ्या। चौथी बात है कि ईश्वर में, जीव में और पदार्थ में जो अंतर है वो वास्तविक अंतर है, सत्य में अंतर है। पांचवा है जो जीवात्माएं स्वभाव से ही भगवान श्री हरि की सेवक हैं, सब जीवात्माएं। छठवां है 2 प्रकार के जीव हैं, एक तो नित्य मुक्त और दूसरे नित्य बद्ध। सातवां सिद्धांत कि जो मोक्ष है इसका मतलब है भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की प्राप्ति। दूसरे शब्दों में प्रवेश करना भगवान की नित्य प्रेममयी सेवा में।
आठवां
सिद्धांत है जो कृष्ण का शुद्ध भक्ति योग है तो वो ही एकमात्र उपाय है
इस मुक्ति को प्राप्त करने के लिए।
नवा सिद्धांत है कि जो सत्य है उसको प्रत्यक्ष प्रमाण से, अनुमान प्रमाण से और शब्द प्रमाण से जाना जा सकता है। तो श्रीमध्वाचार्य भगवान राधा गोविंद की जो नित्य वृंदावन की मधुर लीलाएं हैं उनमें माधवी गोपी के रूप में सेवा करते हैं। श्रील मध्वाचार्य आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की। तो अब हम भगवान रामचंद्र का जो विजयोत्सव है उसको पढ़ेंगे। तो ये वाल्मीकि रामायण है, युद्ध कांड है, तो बहुत विस्तार से युद्ध का वर्णन है इसमें। तो भगवान श्री राम का जो रावण से युद्ध होता है, तो जिस समय युद्ध हो रहा था राम और रावण के बीच में, तो एक अंतर था। अंतर क्या था कि श्री रघुनाथ जी भूमि पर खड़े हैं और वो राक्षस रथ पर बैठा हुआ है। ऐसी दशा में इन दोनों को युद्ध है, बराबर नहीं है। वहां आकाश में खड़े हुए देवता, गंधर्व और किन्नर इस तरह की बातें करने लगे कि भाई मजा नहीं आ रहा इसमें, युद्ध तो देखने वाले आए हैं है ना, लेकिन ये ठीक युद्ध नहीं है, क्योंकि भगवान राम तो जमीन में खड़े हैं और राक्षस राज रावण जो है रथ में बैठा हुआ है, तो ठीक नहीं, दोनों को रथ होना चाहिए, दोनों को रथ मिलना चाहिए। भूमौ स्थितस्य रामस्य रथस्थस्य च राक्षसः तत्समं युद्धमित्याहुर् देवगंधर्वे किन्नरम्। तो देवराज इंद्र ने इन लोगों की बातें सुनी तो अपने सारथी मातुली मातली को बुला करके कहा, इंद्र ने कहा ततो देवे वरह श्रीमान श्रुत्वा तेषां वचो मृतम् आहुए मातलिम सक्रोम वचनम चेदम अम्रवीन। अब इंद्र मातली से क्या कहते हैं, सारथे रहकुल तिलक श्री रामचंद्र जी भूमि पर खड़े हैं, मेरा रथ लेकर तुम शीघ्र उनके पास जाओ, भूतल पर पहुंचकर श्री राम को पुकार कर कहो ये रथ देवराज ने आपके सेवा में भेजा है, इस तरह उन्हें रथ पर बिठाकर तुम देवताओं के महान हित का कार्य सिद्ध करो। रथेन ममे भूमिष्ठम शीघ्रम याहि रघुत्तमम आहुए भूतलम यातः कुरुदेव हितम महन। देवराज किस प्रकार कहने पर देव सारथी मातली ने उन्हें मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और ये बात कही। इत्युक्तो देवराजेन मातलिर देव सारथी प्रणम्य शिरसा देवं ततो वचनम अम्ब्रवीन। अब सारथी मातली क्या कहता है, देवेंद्र मैं शीघ्र ही आपके उत्तम रथ में हरे रंग के घोड़े जोतकर उसे साथ लिए जाऊंगा और श्री रघुनाथ जी के सारथी का कार्य भी करूंगा। शीघ्रम यास्यामि देवेन्द्र सारथ्यम च करोम्यहम् ततो हयश्च संयोज्यं हरितः चन्दनोत्तमम्। अब इंद्र का जो रथ है सोचिए कि कैसा विशेष रथ होगा, सब कुछ सोने का बना हुआ है, विचित्र शोभा है उसकी, सैकड़ों घुंघरुओं से विभूषित किया गया है और सवेरे के सूर्य की भांति लाल रंग का रथ है और उसके कुबर में नीलम जड़ी गई है जिसमें सूर्य के समान तेजस्वी हरे रंग वाले अच्छे घोड़े जुते हुए हैं और उन घोड़ों को श्वेत चमर आदि से अलंकृत किया गया है। उस रथ में आरूढ़ होकर मातली देवराज का संदेश लेकर स्वर्ग से भूतल पर उतरकर श्री रामचंद्र जी के सामने खड़ा हुआ। तथा कांचन चित्रांगहम किंकने सतभूषिताम तरुणादित्य संकाशुम वैदूर्य मय कुबरहम सदस्व कांचना पीडैर युक्ता श्वेत प्रकीर्णक हरि भी सूर्य संकाशैर हेम जाले विभूषित रुक्म वेणुं ध्वजा श्रीमान देवराज रथोवरः देवराजेन संदिष्टुं रथमारुह्य मातलीं अभ्यवर्तत काकुत्स्थम अवितीर्य त्रिविष्टपान। तो मातली जो है भगवान रामचंद्र से बोलता है, क्या बोला, महाबली शत्रुसुदन श्रीमान रघुवीर सहस्र नेत्रधारी देवराज इंद्र ने विजय के लिए आपको ये रथ समर्पित किया है। सहस्राक्षेण काकुत्सम रथोयम विजयायते दत्तस्तव महासत्वम श्रीमन शत्रु निबर्हणे। ये इंद्र का विशाल धनुष है, ये अग्नि के समान तेजस्वी कवच है, ये सूर्य के समान प्रकाशमान बाण है और ये कल्याणमयी निर्मल शक्ति है, उसी रथ में सब सामान है। यदमेन्द्रम महचापम कवचम चाग्ने सन्निभम सराश्चादित्य संकाशम शक्तिश्चा विमला शिवम। वीरवर महाराज आप इस रथ पर आरूढ़ हो मुझ सारथी की सहायता से राक्षसराज रावण का उसी तरह वध कीजिए जैसे इंद्र दानवों का संहार करते हैं। आरोह्य मुम रथम वीर राक्षसम जय रावणम मया सारथिना देव महेंद्र एव दानवम। तो मातली के ऐसा कहने पर श्री रामचंद्र जी ने उस रथ की परिक्रमा की। देखा भगवान राम का कितना शिष्टाचार है, मनुष्य को जो है देवताओं का सम्मान करना चाहिए। तो भगवान राम मनुष्य का जो है ना चरित्र दिखला रहे हैं। तो उस रथ की परिक्रमा करके उसे प्रणाम करके फिर उस पर सवार हुए। उस समय अपनी शोभा से वे समस्त लोगों को प्रकाशित करने लगे। इत्युक्तां सम परिक्रम रथम तम अभिवाद्य आरुरो है तदा रामं लोकान् लक्ष्म्या विराजयन्। अब राम और रावण का द्वैरथ युद्ध आरंभ हुआ। द्वैरथ मतलब हाँ दो रथ है, एक एक रथ में दोनों बैठे हुए हैं। बड़ा अद्भुत रोंगटे खड़े कर देने वाला युद्ध हुआ। रामचंद्र जी उत्तम अस्त्रों के ज्ञाता थे, उन्होंने राक्षस राज के चलाए हुए गांधर्व अस्त्र को गांधर्व अस्त्र से नष्ट किया, देव अस्त्र को देव अस्त्र से नष्ट किया। तब रावण ने अत्यंत कुपित हो परम भयानक राक्षसास्त्र का प्रयोग किया। राक्षसास्त्र अब उस राक्षसास्त्र से क्या हुआ कि रावण के धनुष से छूटे हुए सुवर्ण भूषित बाण महाविशैले सर्प होकर रामचंद्र जी के निकट पहुंचने लगे। कैसा राक्षसास्त्र है। उन सर्पों के मुख आग के समान प्रज्वलित होते थे। वे अपने मुखों से जलती आग उगल रहे थे। सांप वे सब के सब श्री राम के ही सामने आने लगे। ते दीप्ते वदना दीप्तम वमंतो ज्वलनम मुखे राम एवाभ्यमर्तन्ते व्याधिताश्या भयानकम्। अब इस सर्प कितने भयानक हैं कि वासुकी नाग के समान असह्य है। उनका स्पर्श था, उनके फन प्रज्वलित हो रहे थे, वे महान विष से भरे थे। उन सर्पों से व्याप्त होकर संपूर्ण दिशाएं आच्छादित हो गई। सोचो कितना भयानक युद्ध है। युद्धस्थल में उन सर्पों को आते देख भगवान श्री राम ने क्या किया, गारुडास्त्र का प्रयोग किया। तान दृष्ट्वा अपन गान रामा समापतत आहवे अस्त्रम गारुत्मतम घोरम प्रादुश्चक्रे भयावहम्। फिर क्या हुआ, राम के धनुष से छोटे हुए सुनहरे पंख वाले अग्नि के समान तेजस्वी बाण सर्पों के शत्रुभूत सुवर्णमय गरुड़ बनकर सब ओर विचरने लगे। बहुत से गरुड़ बन गए, एक एक बाण जो है ना गरुड़ बन गया और उनको खाने लगे, उन सर्पों को खाना शुरू कर दिया। ते राघव धनुर्मुक्ता रुक्म पुंखा सखी प्रभा सुपर्ण कांचना भूत्वा विचेरु सर्प शत्रुवहम्। अब क्या हुआ कि उन गरुड़ाकार बाणों ने रावण के महान वेगशाली उन समस्त सर्पाकार सहायकों का संहार कर दिया, खत्म। राक्षसास्त्र और गारुड़ास्त्र। अब राक्षसराज रावण क्रोध से जल उठा। उस समय श्री रघुनाथ जी पर भयंकर बाणों की वर्षा करने लगा। तब श्री राम को हजारों बाणों से पीड़ित करके उसने मातली को भी अपने बाणों से घायल कर दिया। तब रावण ने इंद्र के रथ की ध्वजा को लक्ष्य करके एक बाण मारा और उससे उस ध्वज को काट डाला। उस कटे हुए सुवर्ण में ध्वज को रथ के ऊपर से उसके निचले भाग में गिराकर रावण ने अपने बाणों के जाल से इंद्र के घोड़ों को भी छत विक्षत कर दिया। ये तो बहुत जो है ना उसने बहुत बड़ा काम कर दिया। ये देख करके देवता गंधर्व चारण और दानव विषाद में डूब गए। ऐसा लगता है श्री राम की हार होने वाली है। श्री राम को पीड़ित देख सिद्धों और महर्षियों के मन में भी बड़ी व्यथा हुई। विभीषण सहित सारे वानर युद्धपति भी बहुत दुखी हो गए। भगवान राम ऐसी लीला करते हैं। तब तब क्या हुआ, अब भगवान ने क्रोध का भाव प्रकट किया, उनकी भौहें टेढ़ी हो गईं राम की, नेत्र कुछ कुछ लाल हो गए, उन्हें ऐसा महान क्रोध हुआ जैसे जान पड़ता था कि वे समस्त राक्षसों को भस्म कर डालेंगे। सकृत्वा मृगुटिम क्रोधा किंचन संरक्त लोचन जगाम सु महाक्रोधम निर्दहन राक्षसान। उस समय कुपित हुए बुद्धिमान से राम के मुख की ओर देखकर समस्त प्राणी भय से थर्रा उठे और पृथ्वी कांपने लगी। तस्य क्रोधस्य वदनम् दृष्ट्वा रामस्य धीमताम् सर्वभूतानि मित्रेषु प्राकम्पते च मेदिनी। वहां खड़े हुए असुर रावण को संबोधित करते हुए बोले, रावण तुम्हारी जय हो। एक रावण के पक्ष के हैं, कुछ दर्शक लोग हैं, अब तो केवल देख रहे हैं ना, तो रावण के पक्ष के हैं तो बोले, रावण तुम्हारी जय हो। उधर देवता श्री राम को पुकार कर बारम्बार कहने लगे, रघुनंदन आपकी जय हो, जय हो। तथग्रीवम जयत्याहु असुरास्तमवस्थिता देवा रामम अथो चुस्ते तम जयति पुनः पुनः। इस समय दुष्टात्मा रावण ने क्रोध में आकर श्री रामचंद्र जी पर प्रहार करने की इच्छा से एक बहुत बड़ा हथियार उठाया। एतस्मिन्नन्तरे क्रोधान् राघवस्य च रावणः प्रहर्तु कामो दुष्टात्मां स्पृशन् प्रहरणम् महान्। वह जो हथियार था ना, कैसा था, बद्र के समान शक्तिशाली और सब शत्रुओं का संहार करने वाला। उसके अग्रभाग बहुत तीखे थे, प्रलय काल की अग्नि राशि के समान अत्यंत भयंकर जान पड़ता था। उसका नाम था शूल, रावण का जो शूल था बड़ा भयानक था। रावण ने उस शूल को हाथ में लिया। अब रावण क्या बोलता है राम से, उस विशाल शूल को हाथ में लेकर महापराक्रमी रावण ने बड़े जोर से गर्जना करके श्री राम से कठोर वाणी में कहा। राम और रावण की कोई बात हुई नहीं अभी तक, अभी रावण बात कर रहा है कठोर वाणी में, है ना। सगृहीत्वा महावीर्यं शूलं तं रावणो महन् विनद्य सु महानादं रामं परुषं ब्रवीन। क्या कहता है, राम ये शूल वज्र के समान शक्तिशाली है, इसे मैंने रोष पूर्वक अपने हाथ में लिया है, ये भाई सहित तुम्हारे प्राणों को तत्काल हर लेगा। रावण राम से बोल रहा है, शूलोयम वज्र सारस्ति राम रोषान मयोद्यताम तब भ्रातृ सहायस्यम संध्या प्राणान हरिष्यति। युद्ध की इच्छा रखने वाले राघव, आज तुम्हारा वध करके सेना के मुहाने पर जो शूरवीर राक्षस मारे गए हैं उन्हीं के समान अवस्था में तुम्हें भी मैं पहुंचा दूंगा। तुमने रावण को राक्षसों को मारा है, उसी अवस्था में अब तुमको पहुंचा दूंगा, रावण कह रहा है। रघुकुल के राजकुमार ठहरो, अभी इस शूल के द्वारा तुम्हें मौत के घाट उतारता हूं। उसको बहुत विश्वास है कि अब राम को वो मार डालेगा। ऐसा कहकर राक्षसराज रावण ने श्री रघुनाथ जी के ऊपर उस शूल को चला दिया। तिष्ठे दानीम निहन्मित्वाम एत शूलेन राघव एव मुक्त्वा सचिक्षेपम तच्छूलम राक्षसाधिपाम। और वो शूल भी बहुत भयानक था। परम पराक्रमी श्री रघुकुल नंदन राम ने उस भयंकर शूल को अपनी ओर आते देखकर धनुष तान कर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। भगवान राम बाण चलाने लगे उस शूल के ऊपर। लेकिन हुआ क्या कि जैसे आग पतंगों को जला दे, उसी प्रकार रावण के उस महान शूल ने रामचंद्र जी के धनुष से छूटे हुए समस्त बाणों को जलाकर भस्म कर दिया। वो सूल बहुत शक्तिशाली था, राम के जितने बाण हैं वो सब जल गए। तब जब रघुनाथ जी ने देखा कि मेरे सहायक अंतरिक्ष में उस सूल का स्पर्श होते ही चूर चूर हो राख के ढेर बन गए हैं, तब उन्हें बड़ा क्रोध हुआ। देखो राम की तत्क्षण बुद्धि कितनी तीव्र है। अभी सूल जो आ रहा है तो बाण काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन राम जो ना अभी कुछ और करेंगे। अत्यंत क्रोध से भरे हुए रघुवीर ने मातली की लाई हुई देवेंद्र द्वारा सम्मानित शक्ति को हाथ में ले लिया। इंद्र की जो शक्ति वो हाथ में ले ली उन्होंने। बलवान से राम के द्वारा उठाई हुई वह शक्ति प्रलय काल में प्रज्वलित होने वाली उल्का के समान प्रकाशमान थी। राम ने जब उसे चलाया तब वह शक्ति राक्षस राज के सूल पर ही पड़ी। उसके प्रहार से टूक टूक और निस्तेज होकर वो महान सूल पृथ्वी पर गिर पड़ा। सूल और शक्ति का जो है ना, ये इंद्र की शक्ति ने और राम के हाथ से छूटी इस कारण से, नहीं तो वो शक्ति भी काम नहीं करती। साक्षिप्ता राक्षस इंद्रस्य तस्मिन् शूले पपातः भिन्न शक्त्या महान् शूलो निपातय गहन द्युति गत द्युति। इसके बाद श्री रामचंद्र जी ने सीधे जाने वाले वज्र के समान पहने बाणों के द्वारा रावण के घोड़ों को घायल कर दिया। फिर अत्यंत सावधान होकर उन्होंने तीन तीखे बाणों से रावण की छाती छेद डाली और पंखदार बाणों से उसके ललाट में चोट पहुंचाई। उन बाणों की मार से रावण के सारे अंग छत विक्षत हो गए, उसके सारे शरीर से खून की धारा बहने लगी। उस समय रावण सेना के समूह में खड़ा हुआ ऐसा मालूम पड़ता है जैसे फूलों से भरा हुआ अशोक वृक्ष का अशोक वृक्ष शोभा दे, मतलब पूरे शरीर में खून की धारा बह रही है। राम के बाणों से जब सारा शरीर अत्यंत घायल हो लहू लुहान हो गया, तब रावण को उस रणभूमि में बड़ा खेद हुआ। तब उसने बड़ा क्रोध प्रकट किया। जैसे बादल आकाश से जल की धारा बरसाकर तालाब को भर देता है, उसी प्रकार रावण ने हजारों बाणों की धारा बरसाकर रामचंद्र जी को आच्छादित कर दिया। कितने बाण मारे, लेकिन भगवान राम विचलित नहीं हुए। जैसे महान पर्वत पर्वत के ऊपर वर्षा की धारा कितनी पड़े, पर्वत विचलित नहीं होता है। उसी प्रकार अपने बाणों से रावण के बाणों का निवारण करते हुए पराक्रमी रघुवीर ने शत्रु के बाणों को ग्रहण किया। इसके बाद रावण बहुत कुपित होकर के भगवान की छाती में हजारों बाण मारता है। तो भगवान श्री राम जो है ना रक्त से नहा उठे और कुपित होकर के अब सूर्य के समान तेजस्वी बाणों को राम ने हाथ में लिया। अब दोनों एक दूसरे पर जब बाण चलाते हैं तो ऐसा अंधकार छाया बाणों का कि राम और रावण दोनों एक दूसरे को देख नहीं पा रहे हैं, इतने बाण एक दूसरे पर चला रहे हैं। अब श्री राम जो है रावण से कठोर वाणी में बोले। तो रावण ने पहली बार राम से जो बोली बात वो आपने सुनी, अब राम जो है ना कठोर वाणी में अब रावण से बोलते हैं। तथा क्रोध है समाविष्टो रामो दशरथात्मज उवाच रावणम वीरहम प्रहस्य परुषम वचः। अब राम क्या कहते हैं, नीच राक्षस तू मेरे अंजाम में जन स्थान से मेरी असहाय स्त्री को हर लाया है, इसलिए तू बलवान या पराक्रमी तो कदापि नहीं है। अभी तू पराक्रम जो अपना दिखा रहा है तो तेरा क्या पराक्रम, पराक्रमी तुम बिल्कुल है ही नहीं। मम भार्या जनस्थानात् अज्ञानान् राक्षसाधन हताते व्यवसायस्मान् तस्मात् त्वं नासि वीर्यवान्। विशाल वन में मुझसे विलग हुई दीन अवस्था में विद्यमान विदेह राजकुमारी का बलपूर्वक अपहरण करके तू अपने को सूरवीर समझता है। अच्छा इस बात का कोई जवाब नहीं है, उसके पास कोई जवाब नहीं है, तो अपने को सूर भी समझता है। माया विरहिताम दीनाम वर्तमानाम महाबने वैदेहीं प्रसिमं मृत्वा सूरोहम इति मन्यसे। असहाय अबलाओं पर वीरता दिखाने वाले निशाचर, पर स्त्री के अपहरण जैसे कर्म करके तू अपने को सूरवीर मानता है, स्त्री ससुर है विनाशासुन परतारा भी मर्शनम कृत्वा काक्रोशम कर्मम सूरोहम इति मन्यसे। धर्म की मर्यादा भंग करने वाले पापी निर्लज्ज और सदाचार शून्य निशाचर, तूने बल्कि घमंड से वैदेही के रूप में अपनी मौत बुलाई है। क्या बुलाई है? मौत। तू अपनी मौत ही पकड़ करके ले गया है। क्या अब भी तू अपने को सूरवीर समझता है? धन्य मर्यादे निर्लज्ज चारित्रे सुनवस्थित दर्पान मृत्युमुपादाय सूरोहम इति मन्यसे। ये बातें जरूरी है ना बताना। राम जो ना जो बोल रहे हैं, ये बोलना जरूरी था राम का। तुम बड़ा सूरवीर बल संपन्न और साक्षात कुबेर का भाई जो है, इसीलिए तूने यह परम प्रशंसनीय और महान यशोवर्धक कर्म किया है। सूरेण धनादे भ्रात्रा बले समुदितेन च श्लाघनीयम महत्कर्म यशस्यम च कृतम त्वया। अभिमान पूर्वक किए गए उन निंदित और अहितकर पाप कर्म का जो फल है, उसे तू आज अभी प्राप्त कर। कर्मणा प्राप्नीय इदानीं तस्यादेशु महत्फलम्। खोटी बुद्धि वाले निशाचर, तू अपने को सूरता से संपन्न समझता है, किंतु सीता को चोर की तरह चुराते समय तुझे तनिक भी लज्जा नहीं आई। सोरोहमिति चात्मानम् अवगच्छसि दुर्मते नैवलज्जासि ते सीताम् चोरेवं व्यपेकर्षतः। यदि मेरे समीप तू सीता का बलपूर्वक अपहरण करता, तो अब तक मेरे बाणों से मारा जाकर अपने भाई खर का दर्शन करता होता। मेरे सामने कर दिया हुआ। यदि मत सन्निधौ सीता दर्शिता स्या त्वया बलान् भ्रातरं तु खरं पश्येत् तया मत सायके रहतः। मंद बुद्धे, सौभाग्य की बात है कि आज तू मेरे आंखों के सामने आ गया है। मैं अभी तुझे अपने तीखे बाणों से यम लोक पहुंचाता हूँ। दृष्ट्यासि मैं मंदात्मं चक्षुर विषय मांगताम अद त्वाम साय के तीक्ष्ण निर्णयामी यमे साधनम। आज मेरे बाणों से कटकर रणभूमि की धूल में पड़े हुए जगमगाते कुंडलों से युक्त तेरे मस्तक को मांस भक्षी जीव जंतु घसीटेंगे। अद्यते मच्छरे छिन्नम सिरोज्वलते कुंडलम।